वचन। नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तेरा प्यार ही मुझको मसीह पहुंचाता है, ये कहां खुशियों के साए मुझे ले जाता है, ये कहां तेरा प्यार ही मुझको।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला तिमोथियस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक पौलुस है। तो मित्रों, पिछले अध्ययन में पौलुस हमें दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के विरुद्ध में चेतावनी देता है, तो आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम सब मिलकर फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हम सब से बातचीत करते हैं। आज जब हम तिमोथियुस की पत्री से फिर से अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में आपके वचन के द्वारा कार्य होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, अपने जीवन की परेशानियों के कारण दबाव में हैं, तनाव में हैं। विनती है कि आप उन्हें शांति प्रदान करें, उन्हें छुटकारा दें, ताकि वे आप पर भरोसा रख सकें। आज के इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें। लिखा है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 2 पद में, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यहाँ पर लिखा है झूठे मनुष्यों के कपट। ये विश्वास त्यागी, धर्मी और श्रद्धालु होने का प्रदर्शन करेंगे। मैं इस धार्मिकता पर सदैव ही शंकित रहा हूँ जो ये ढोंगी संत प्रकट करते हैं कि वे विशेष हैं। मेरे मित्रों, यदि आपके पास सत्य है तो वह आपको दीन जन बनाएगी, क्योंकि पहली बात जो आप देखेंगे वह है कि आप अज्ञानी हैं। मुझे भी यह बोध होता है कि मैं बाइबल के बारे में कितना कम जानता हूं। आज कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते तो बहुत कम हैं, परंतु दिखाते ऐसा हैं जैसे कि वे सब वचन को जानते हैं और वचन के प्रकांड पंडित हैं। उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, वे जो है ही नहीं वही वे दिखाते हैं। आज हम में से कई लोग ऐसा ही करते हैं। आगे कहता है जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं कि स्थानीय कलीसिया के गुण हैं शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास, प्रेम आदि। हमारे मन कोमल होने हैं। जी हाँ, कपट रहित होना है, हमारे विश्वास और प्रेम में बढ़ोतरी होनी है। आज कलीसिया में यौन विषय पर बहुत अधिक चर्चा है। मैं कलीसियाओं में होने वाली बातें सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ ऐसी बातें कही जाती हैं और की जाती हैं, वे तब ही संभव हैं जब किसी का विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया हो और आप परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हों। परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि कलीसिया में शुद्ध विवेक हो, कि वह ऐसे गिरे हुए स्तर पर ना आ जाए। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के इस वचन के आधार पर शुद्ध, पवित्र और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने वाला बनना है। पहला तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। प्रभु यीशु के युग में भी यहूदी अन्य धार्मिक पंथों के चेले बन गए थे। यह आज कोई नई बात नहीं है, यह तो सदियों से चला आ रहा है। लिखा है विवाह करने से रोकेंगे। प्रभु यीशु के समय में भी मृत सागर के निकट एक समूह था, एसनीज, जो विश्वास में आ गए थे और पैलेस्टीन की कलीसिया के सदस्य हो गए थे। उन्होंने झूठी शिक्षाओं में बड़ा योगदान दिया है, जिनमें एक है विवाह ना करना। वे दूसरों को विवाह ना करने की सलाह देते थे। और तब हम आगे पढ़ते हैं, भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। जी हाँ, कुछ लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भोजन ना खाने का नियम बनाते हैं। यह सच है कि आप अनुचित भोजन खाकर पेट के विकार का शिकार हो जाएंगे, परंतु आपके आत्मिक जीवन से उसका कोई भी संबंध नहीं है। आज आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप पचा सकते हैं तो आप खाएं, दूसरों को आप हानि ना पहुंचाएं। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम पाते हैं कि लोग खाने पीने और विवाह न करने की सलाह दे करके झूठी शिक्षा का अफवाह फैलाते हैं। परमेश्वर का वचन भोजन का तिरस्कार नहीं है, उसकी सराहना करता है। यदि आप भोजन के लिए धन्यवाद दे सकते हैं तो वह आपके लिए शुद्ध है, धन्यवाद के साथ खाई जाए। कुछ भोजन के लिए मैं धन्यवाद नहीं दे पाता हूं। कहीं कहीं आपको यदि सांप का मीट या मांस खाने के लिए दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? शायद नहीं, और इसी कारण मैं भी धन्यवाद नहीं दे पाता हूं। परंतु यदि आप धन्यवाद देकर खा सकते हैं तो आप खाइए, वह उचित है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरे मित्रों, आगे पौलुस कहता है कि आने वाले समयों में विश्वासी भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसे समय में एक अच्छा सेवक क्या करेगा? विश्वास त्याग के समय मसीह यीशु का अच्छा सेवक क्या करे? आइए हम पढ़ें पहला तीमोथियुस 4 अध्याय उसके 6 पद में, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, पौलुस ने तीमुथियुस को कलीसिया में आने वाली झूठी शिक्षाओं और विश्वास से भटकने के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। भविष्य में ऐसे विश्वासी होंगे जो विश्वास का अंगीकार तो करेंगे परंतु समय आने पर वे इनकार भी कर देंगे। तीमुथियुस को उन्हें इन बातों के प्रति सतर्क करना था। मेरे मित्रों, आज क्या हमारी कलीसिया इन सब बातों के लिए सतर्क है? क्या आप सतर्क हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सतर्क हो जाएं। पौलुस कहता है मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। प्रत्येक विश्वासी सेवक है, इस बात को आप जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। परंतु यहां पौलुस के मन में विशेष करके तीमुथियुस वचन का शिक्षक है। यह एक वरदान है जो किसी को प्राप्त है और किसी को नहीं, परंतु विश्वासी सब के सब प्रभु के सेवक हैं और परमेश्वर प्रत्येक को किसी न किसी रूप में उपयोग करना चाहता है। पौलुस कहता है विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। जी हां, विश्वासी को परमेश्वर के वचन में ऐसे ही पोषित होना है। हमें भोजन और साज सज्जा के चक्कर में नहीं पड़ना है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमारा भोजन विश्वास का वचन और अच्छी शिक्षाएं हैं, इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना है। जो तू मानता आया है, कुछ विचारकों के अनुसार इफिसुस में झूठे धर्म और शैतानी कामों का बोलबाला था और खतरा यह था कि तीमुथियुस भरमाया ना जाए। परंतु पौलुस कहता है कि तीमुथियुस उन बातों में पोषित हुआ है जिनका उसने यहां उल्लेख किया है। मेरे मित्रों, पौलुस ने तीमुथियुस को धर्म त्याग और झूठी शिक्षाओं के प्रति सचेत तो किया था, परंतु वह अन्य अनेक बातों का उल्लेख भी करेगा जिनसे तीमुथियुस को सावधान रहना होगा और मुझे और आपको भी। पहला तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी से अलग रह। जब मैं बच्चा था तब बूढ़े जन अनेक किस्से कहानियां सुनाते थे। मुझे एक महिला का एक नुस्खा स्मरण आता है। उसने मेरी माता को बताया कि गंधक, शराब की पपड़ी, शहद और शीरा मिलाकर मुझे खिलाएं। मेरी माता ने मुझे बहुत खिलाया। मुझे पता नहीं कि उससे मुझे क्या लाभ हुआ। एक बार जब मैं बीमार पड़ा तो लोगों ने मुझे कम से कम 100 किताबें दी ताकि मैं उसको पढ़ूं कि क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। मैंने इनमें ऐसी कोई पुस्तक नहीं देखी जो दूसरे से विपरीत ना हो। एक पुस्तक में लिखा था कि बहुत अंगूर खाएं, तो दूसरी में लिखा था कि अंगूर कभी ना खाएं। एक पुस्तक में लिखा था कि शहद खाएं, तो दूसरी पुस्तक में लिखा था कि शहद ना खाएं। अतः मैंने सोचा कि सब कुछ छोड़कर अपने आप को महान वैद्य के हाथ में छोड़ दें। जी हाँ, कई बार हम लोग कुछ खाने पीने की बातों में उलझ जाते हैं, परंतु इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा महान परमेश्वर जो एक वैद्य है, एक डॉक्टर है, जो हमें चंगाई दे सकता है, उसकी ओर हम नहीं देख पाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर निहारें और उससे मांगे, क्योंकि वह मुझे और आपको भी चंगाई दे सकता है। हम आगे पढ़ते हैं, भक्ति की साधना कर। तिमुथियुस को अपने जीवन में ईश्वर भक्ति में लीन रहना है। बहुत से लोग मत कर पर अधिक ध्यान देते हैं, ईश्वर भक्ति पर नहीं। पहला तिमुथियुस 4:8 में लिखा हुआ है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। देह की साधना से कम लाभ होता है। पौलुस साधना की अपेक्षा ईश्वर भक्ति पर बल देता है। विश्वासी प्रायः शारीरिक व्यायाम पर अधिक ध्यान देते हैं और भक्ति पर कम। कुछ लोग प्रार्थना सभा में उपस्थित होने की अपेक्षा खेल देखना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। साधना तो केवल इस शरीर के लिए लाभदायक है, नई देह के लिए वह किसी भी काम की नहीं है। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। जी हाँ, वे जो कहते हैं कि विश्वासी पाप में गिर सकता है और आसान शर्तों पर उभर सकता है, सही कहते हैं आप, परंतु मेरे मित्रों, भक्ति का जीवन यहां ही नहीं, अनंत जीवन में भी लाभ पहुंचाता है। उड़ाव पुत्र ने पूरे देश जाकर बहुत हानि उठाई थी और निश्चिंत जीवन जीने वाला विश्वासी भी अनंत जीवन तक करनी का फल भोगेगा। शारीरिक बातें इसी जीवन के साथ समाप्त हो जाती हैं, परंतु भक्ति आने वाले जीवन में भी चलती रहती है। पहला तिमुथियुस की पत्री 4:9 में हम पढ़ते हैं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। मेरे मित्रों, पौलुस ने अब तक जो कहा है उसी पर वह बल दे रहा है। तुम इस बात पर निर्भर रह सकते हो। आप इस बात पर प्रथम शताब्दी में निर्भर रह सकते थे। आप इस बात पर इस शताब्दी में भी निर्भर रह सकते हैं, और यदि जीवित रहें तो आने वाली शताब्दी में भी निर्भर रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको किसी दूसरी ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला तिमुथियुस 4:10 में लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं। जी हाँ, यदि आज आप प्रभु यीशु के लिए जीवित हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। इसमें दो राय नहीं है। लिखा है, जो सब मनुष्यों का उद्धार करता है। हम यीशु के रूप रंग कद काठी आदि की बहुत चर्चा करते हैं। एक विश्वासी यीशु के श्याम वर्ण चित्र को देखकर रुष्ट हो गया। मैंने उससे कहा कि उसका रूप रंग महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि वह सब मनुष्यों का उद्धार करता है। धर्मशास्त्र यह सब नहीं बताता है। जी हाँ, उसमें केवल यही लिखा है कि वह सबका उद्धार करता है। आप जो भी हैं वह आपका उद्धार करता है। यदि आप उसे प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो निश्चय ही वह आपका भी उद्धार करता है। पौलुस कहता है निज करके विश्वासियों का वह सबका उद्धार करता है, परंतु आप उसका इनकार कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। एक रेलगाड़ी जो चलती है वह सबके लिए है, आप टिकट लें और उस पर बैठ जाएं, परंतु सब उसमें यात्रा नहीं करेंगे। प्रभु यीशु सबका उद्धार करता है, परंतु उसमें विश्वास करने वाला ही उद्धार पाएगा, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो कोई उस रेलगाड़ी में जाएगा वह बच जाएगा, वह उद्धार पाएगा। और हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री उसके 2:2 में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जी हाँ, उसने आपके मेरे सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले लिया, इसलिए वह हम सब का उद्धार करता है। हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस के पत्र 4:11-12 में, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। पौलुस जानता था कि कलीसिया में कुछ लोग उसे युवक समझकर अनुभवहीन कहेंगे। निसंदेह कुछ बातों में वह अनुभवहीन हो, परंतु वह किसी को अपनी जवानी पर तुच्छ न समझने देगा। आगे कहता है कि विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। अब तीमुथियुस कैसे व्यवहार करे? वह एक युवा मूर्ख का सा व्यवहार ना करे। अपनी सेवा जिसे परमेश्वर ने उसे दी है उसे अच्छी रीति से पूरा करे। जी हाँ, अपनी सेवा के आरंभ में अभिषेक से भी पूर्व मैंने एक वृद्ध जन से कहा कि मुझे डर लग रहा है और मैं थोड़ा बेचैन भी हूँ, क्योंकि कलीसिया में वचन बांटना सुनने के लिए वृद्ध जन भी होंगे। उन्होंने मुझसे कहा, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी जवानी को तुच्छ ना समझें, परंतु विश्वासियों के लिए आप आदर्श बन जाएं। जी हाँ, महत्वपूर्ण बात आपकी जवानी नहीं, विश्वासियों के लिए आपका आदर्श जीवन है। पौलुस तीमुथियुस को समझाता है कि वह कौन कौन सी बातों में आदर्श स्थापित कर सकता है, वचन में, चाल चलन में, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में। नई नैतिकता में कोई नई बात नहीं है। बाइबल की नैतिकता कुछ लोगों के लिए सर्वथा नहीं है। यह आदर्श के 6 परमेश्वर का मानदंड है। पहला तीमुथियुस के पत्री 4:13 में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रह। मेरे मित्रों, सेवक को सबके लिए धर्मशास्त्र पढ़कर सुनाना है। क्यों? ढाड़स बंधाने के लिए और सिखाने के लिए। जब तक कलीसिया सदस्यों को परमेश्वर के वचन में स्थिर ना करे तब तक वह अपने मुख्य काम से चूक रही है। यह तिमोथियुस के लिए व्यक्तिगत निर्देश भी थे, सेवक अपने मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए वचन पढ़ें। एक विकासमान सेवक की कलीसिया भी विकासमान होगी। डीएल मूडी के बारे में एक महान बात यह कही गई थी, डीएल मूडी जब भी घर लौटते थे तब आप कह सकते थे कि उन्होंने कितनी आत्मिक उन्नति की है। क्या आज आप पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आत्मिक उन्नति कर चुके हैं? क्या आप अनुग्रह और प्रभु ईश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं? इस विकास का एकमात्र साधन है परमेश्वर के वचन के महान सत्यों को पढ़ना, उसके अनुसार चलना और अपने जीवन को जांचना। तब हमें पता चलेगा कि हम बढ़ रहे हैं या वहीं पर स्थिर हो गए हैं। मेरे प्रियो, पौलुस तिमोथियुस से कहता है कि उसे जवानी के दिनों में अपने चाल चलन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, वचन के द्वारा कलीसिया के लिए एक आदर्श बनना है। आज न केवल पौलुस के लिए लेकिन प्रत्येक जवान के लिए है, प्रत्येक माता पिता के लिए है, ताकि हर एक व्यक्ति कलीसिया के लिए आदर्श बन जाए, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिल सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।